سورت یونس شروع کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. چند باتیں سورت کے بارے میں، اس لیے کہ اس کا مزاج دوسری سورتوں سے مختلف ہے. اس سے پیچھے ہم نے ایک بہت بھاری بھرکم سورت توبہ پڑھی، جس کے اندر امت مسلمہ کو ڈھیر ساری سے میسج دیے گئے. لیکن سورت یونس جو ہی آپ پڑھیں گے، آپ کو لگے گا بہت لائٹ سورت، ہلکی سی سورت ہے. اور مکی سورتوں میں عموماً احکامات نہیں ہوتے. ایمان ثلاثہ، یعنی ایمان کی تھری ڈفرینٹ کائنڈز، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان ہے. سورت یونس کا ٹاپک ایمان بالرسالہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ابھی تک ان کا دل ہی نہیں کھل رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایمان بالقرآن کی جھلکیاں دکھیں گی. یہ وہ سورت ہے کہ جس میں 14 مرتبہ اللہ نے انسانیت کو پکارا ہے، یا ایھا الناس. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگ جو کہ خود کو مسلم نہیں کہتے، ان سے شیئر کر سکتے ہیں یہ بات کہ دیکھو، صرف ایک چیپٹر آف دی قرآن میں 14 ٹائم اللہ تعالیٰ نے پوری مینکائنڈ کو بلایا ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے. اس سورت میں لفظ قرآن بھی آئے گا، اور کتاب کا بھی بہت دفعہ ہمیں ذکر ملے گا. اور یہاں سے قرآن پاک کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں منزل نمبر 3 شروع ہوتی ہے. صحابہ کرام پورے قرآن کو ایک ہفتے میں پڑھ لیتے تھے تلاوت کرتے ہوئے. 7 ڈیز میں 30 پارس کریں گے تو ایک دن میں کتنے پارے بنیں گے آپ نوٹ کیجئے. لیکن ان کا پڑھنا وہ ہمارے والا نہیں تھا، بلکہ ان کو ساتھ سمجھ بھی آ رہا ہوتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا کیسے پڑھتا ہے؟ ہم تو ایک پارا پڑھ کے تھک جائیں، ہمیں تو آدھا پارا پڑھتے ہیں گلا خشک ہوتا ہے. کسی کا کمنٹ ملا کہ انہوں نے کہا یہاں ہم 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وقت کا، ہم پارا بھی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ بھی پتہ چلتا ہے، گھر جا کے ہم صرف تلاوت شروع کرتے ہیں، ابھی آدھا پارا پڑھتے ہیں ہمارا گلا سوکھنے لگتا. تو وہ گلا سوکھتا ہے. کیوں سوکھتا ہے؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یاد رکھیے کہ قرآن کی ایک برکت ہے. تو اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن کو عمل میں ڈھالیں گے، اتنا ہی زیادہ قرآن اور پڑھا جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی مثال ذہن میں رکھیے کہ گاڑی میں جب گیس ڈالتے ہیں، تو گیس کو جب یوز کر لیتے ہیں تو اور گیس لینے کو دل کرتا ہے. اگر پہلی گیس گاڑی میں موجود رہے تو دوبارہ نہ لیتے ہیں نہ آتی ہے، وہ اوور فلو ہونے لگتی ہے. یہ جو نماز اور قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہمیں ایمان کی گیس دیتے ہیں. جب اس گیس کو ہم نیکیوں میں استعمال کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات یا سابقون الاولون کی صورت میں، تو پھر ہمارے دل کے اندر جگہ بنتی جاتی ہے، پھر ہمیں اور قرآن کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمیں اتنی کریونگ تو نہیں ہوتی قرآن کی. صحابہ کا تعلق اتنا خوبصورت تھا، جہاں بیٹھتے جیسے آپس میں آپ اور میں بیٹھ جائیں، جب برادرز کہیں بیٹھیں تو کہتے تھے آؤ قرآن پڑھتے ہیں، آؤ شب بتنا الا ربنا، ہمیں ہمارے رب سے ملاقات کرواؤ، ہمیں اللہ کا شوق دلاؤ، ہم قرآن پڑھیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہتے میرے لیے قرآن پڑھیں، کبھی ابو موسیٰ الاشعری سے کہتے. تو اس قرآن کو پڑھنے کی محبت کب آئے گی؟ جب سمجھ آئے گی. ہم ماشاءاللہ سال میں ایک بار پڑھ لیں تو بڑی بات ہے رمضان میں، یا پھر وہ ایک جو ہماری آمین ہوئی تھی بچپن میں، آج تک اسی آمین پہ لگے. کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع بہت دفعہ کرتے ہیں لیکن آخری پاروں تک نہیں پہنچ پاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پارے میں بشرا لفظ بھی بہت آئے گا، یعنی صورت میں ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی دی جائیں گی. قرآن پاک کے مختلف نام بھی آئیں گے. نزول کے اعتبار سے یہ 51 نمبر کی سورہ ہے، یعنی اس سے پہلے 50 سورتیں نازل ہو چکی تھی. مکی دور کے بالکل آخری دور کی سورت ہے، جب مکہ میں مزاحمت شروع ہو چکی تھی، ریزسٹنس تھی लोग नबी सल्लम की दावत के रास्ते में रुकावटें लाते थे, तो अल्लाह ताला ने बताया कि जब दीन के ऊपर लोग पाबंदियां लगाएं, मुश्किलात में डाल दें, तो उस वक्त तुम्हें क्या करना है। और नाम सूरत यूनस क्यों है? क्योंकि इसमें उस कौम यूनस की तौबा का जिक्र है, बिल्कुल आखिर में आएगी। बस सब ये होता है कि हमारे जहन में था यूनस नाम है, तो इसका था कि हजरत यूनस पे कैसे होगा, जैसे हम बचपन में लिखते थे दिस इज अ बुक, दिस इज वेरी गुड बुक, दिस दिस दिस। तो कुरान की सूरतों का ऐसा मिजाज नहीं है कि आप किसी चीज को एक टॉपिक समझें, बल्कि जिस पॉइंट को हाईलाइट करना होता है, जिसमें अमल की बात है। और बाकी कौम यूनस की एक यूनिक बात है, ये वाहिद कौम है दुनिया में कि जिस पर एक दफा अजाब के असरात शुरू हो चुके थे, लेकिन उनके तौबा करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। तो आइए देखते हैं, बहुत प्यारे दिल के साथ मोहब्बत से पढ़ने की सूरत है। और हकीकत है कि अगर अभी तक आप अपने दिल में कुरान की मोहब्बत वैसे नहीं पा रहे, जैसी कि अक्सर बातों में कहा जाता है कि अपने बच्चों से मोहब्बत जैसी है वैसी, तो इंशाल्लाह इस सूरत के बाद अल्लाह ने चाहा तो आप अपने दिलों में इसको महसूस करेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक और छोटी सी बात समझिए कि सूरत यूनुस को एक टाइटल दिया करती हूँ अक्सर मैं, और वो क्या है कि दिल का दरवाजा अंदर से खुलता है। इस सूरत में दिल कुरान के लिए कब खुलेगा, इसका जिक्र कैसे, जब आप अपना दिल खोलेंगे। तो कुरान तो खुला हुआ है, लेकिन हमारा दिल खुला हुआ है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को आज खोल दे, आज का पारा वाकई हमारे दिलों को खुलने का जरिया बन जाए, और हम इस सूरत के साथ साथ अपने आप को इस तरह से रिलेट करें कि मेरा इस कुरान के साथ क्या ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो हिकमत और दानिश से लबरेज है। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद इन्हीं में से एक आदमी पर वही भेजी कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चुका दे और जो मान ले इनको खुशखबरियां दे दे कि इनके लिए इनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। इस पर मुनकरीन ने कहा, ये शख्स तो खुला जादूगर है। क्या पता चला? गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंकाने वाली ये किताब है। अगर आप इस सूरत में से कुरान की खूबियां नोट करते जाएं, तो ये पहली चीज है, ये गफलतों के पर्दों को चाक करती है। और हकीकत है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी गफलतों में गुजर जाती है, लेकिन जब ये किताब खुलती है तो अल्लाह के हुक्म से उस सब पर्दे चाक होते हैं। और दूसरी खूबी इस किताब की, ईमान वालों को, मानने वालों को अल्लाह के पास सच्ची इज्जत की खुशखबरियां सुनवाती है। कदम असद के इंदिरा, कदम असद के सच्चे कदम, कैसे कदम कि जिंदगी में सच आने लगता है। और आप देखेंगे कि कुरान को समझकर पढ़ने से पहले और बाद जो एक बिग चेंज आप देखेंगे ना, आपको झूठी चीजों से चिढ़ हो जाएगी। झूठे कहानियां, झूठे नॉवल, अफसाने, ड्रामे, फिल्में, आप करेंगे छोड़ो, 3 घंटे में क्या जाया करूं इस चीज में पढ़कर। और आहिस्ता आहिस्ता आपके वक्त में बरकत होती जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बरकत बहुत हो जाएगी। फिर फरमाए, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी होकर कायनात का इंतजाम चला रहा है। कोई शिफात करने वाला नहीं इल्ला ये कि इसकी इजाजत के बाद सिफारिश करेगा, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस तुम इसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में नहीं आओगे। मक्का वालों ने कई खुदा बना रखे थे, कई बुत थे उनके, कि जिनको वो अपनी जिंदगी में जगह दिए बैठे थे। अल्लाह सुबहान तआला कहता है कि बताओ, क्या तुम इस रब को छोड़कर दूसरों को सिफारशी बनाते हो। देखिए, अगर किसी से कहा जाए कि क्या आपको बादशाह के साथ ताल्लुक अच्छा लगेगा, जिसके इख्तियार में जस्ट नो एवरीथिंग है, या आपको बादशाह के किसी दरबारी से दोस्ती करनी है जो बादशाह से सिफारिश कर सकता है, तो आप और मैं सब यही कहेंगे कि हमें बादशाह से दोस्ती करनी है, क्योंकि जब मैं खुद उसकी दोस्ती में आ गई तो फिर तो बात और भी हो जाएगी। जब मैं खुद उसकी दोस्ती में आ जाऊंगा तो बादशाह से बात मनवानी आसान होगी। अब आप अल्लाह के लिए मिसाल तो कोई नहीं है, लेकिन इससे ये खूब समझ चुके होंगे कि जब अल्लाह सुबहान तआला के साथ इंसान का गहरा ताल्लुक हो जाता है, फिर उसको किसी दूसरे की परवाह नहीं होती। और यही सबक मुझे और आपको दिन में 17 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में सुनाया गया। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे तेरे साथ ताल्लुक के जो तार टूटे हुए हैं, बीच में जो दूसरे लोग आ गए, तो अपनी रहमत से उनको दुरुस्त जगह पे ले आ। फिर फरमाइसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। सोचो, क्या मुझे यकीन है इस बात का कि मुझे अल्लाह की तरफ पलट के जाना है? देखिए, खबर तो है, मालूम तो हम सबको है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मालूम मेरे अमल पे असर अंदाज हो रहा है? اگر اثر انداز ہو رہا ہے تو پھر واقعی یقین ہے کہ جانا ہے اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. یہ نہ سوچے کہ یہ کچھ چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ واپسی ہی تو رلاتی ہے. ورنہ تو زندگی میں موج مستیاں کر کے انسان دنیا سے چلا جائے کتنی بڑی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھو تو تم نے میری طرف آنا ہے. عام زندگی میں بھی دیکھیے, جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا آپ نے کہیں سے واپس جانا ہے تو آپ اس طرح کھل کے وہاں دل نہیں لگاتے. کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کتنے دن رہ گئے, کتنے اور دن ہیں. اور جب آپ کسی ایک جگہ رہتے ہیں تو پھر آخر آپ کا وہاں بڑا اچھا دل لگ جاتا ہے. جب ہم اس دنیا میں رہنا سوچ لیتے ہیں نا تو ہمارا یہاں دل لگ جاتا ہے. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں اپنا ٹیمپریری ریزیڈنسی کا دور سمجھ لیں تو ہم سب کی نظریں جنت کی طرف لگی ہوں گی. کوئی بھی شخص کرائے کے گھر میں نہیں رہنا پسند کرتا, کہتے اپنے گھر جائیں گے پھر وہاں جو بھی کریں گے کر سکتے, حالانکہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہاں بھی لمیٹیشن ہے. لیکن سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے نا تو دنیا میں جینے کا سٹائل بدل جاتا ہے. اگر اس بات کا یقین آ جائے کہ میں اس دنیا میں وقتی طور پہ رکھی گئی ہوں, پھر میں بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئے اور دردناک سزا بھگتے ہیں اس انکار حق کے جرم میں جو وہ کرتے رہے. دعا کیجیے اللہ میں حق کا انکار سے بچائے. اور ہم گرم پانی نہیں پی سکتے, ہم تو فریج کے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں, کہاں ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی, چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب کو معلوم کر سکو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھ رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا اس پوری صورت میں لقوم یعلمون, یعلمون کا لفظ بہت دفعہ آئے گا, کیونکہ جہاں قرآن کا موضوع ہوگا وہاں علم کی بات ہوگی. پتہ چلا کہ قرآن علم دوست ہے, قرآن انسان کو علم لینا سکھاتا ہے. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہاں قدرہ و منازلہ کی بات ہے نا, مشرکانہ کلچر پہ چوٹ ہے. ہر دور میں مشرکانہ کلچر والوں نے ستاروں کے اثرات زندگی میں محسوس کیے. ان کا کیا ہوتا ہے, پیدا ہونے کی تاریخ بڑی اہم ہے. اس دن آپ کا ستارہ کس تک آتا ہے, آپ کے ستارے گردش میں, کوئی رنگ خاص آپ کے لیے, کالا رنگ بڑا منحوس ہے, سفید میں یہ ہے, سبز میں یہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پتھر بڑا منحوس ہے, فلاں ڈیٹ منحوس ہے, 13 کا عدد, بہت سارے کلچر ایسے جس میں منحوس ہیں. آج بھی دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 13 نمبر لفٹ میں نہیں چلتا, 13 ڈالتے ہی نہیں, کہتے ہیں یہ منحوس ہے. اور میں خود ایک ایسی جگہ سفر کر چکی ہوں, ایک ایئرپورٹ پہ ہم گئے تو کاؤنٹرس لگے ہوتے ہیں 1-2-3, تو وہاں وہ نمبر دیکھ کے جاتے ہیں, تو 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 دیکھا, مجھے سمجھ نہیں کیا. بعد میں وہاں جو ورکرس ان سے پوچھا, کہتے ہیں اس ملک کے لوگ 13 کا عدد پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کرے یہ سورج چاند ستارے یہ ان چیزوں پہ کوئی اثر نہیں رکھتے. آپ بتائیے جو پیدا ہی 13 تاریخ کو ہو گیا تو کیا وہ منحوس ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام اس طرح کی توہم پرستی سے بچاتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑے پھر پیار سے کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. یقین کریں اس کی آیتیں دل پہ لینے والی ہیں. میں اگر صرف ٹون چینج کر کے ترجمہ پڑھ لوں تو آپ فوراً اس پہ غور کرنے لگ جایا کرے اور اس کو ہائی لائٹ کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہو گئے, پوچھئے خود سے کیا میرا ذکر تو نہیں ہے, کیا مجھے اللہ سے ملنے کی امید ہے, کیا میں دنیا ہی کی زندگی پہ راضی تو نہیں ہو گئی, کیا میں یہاں مطمئن تو نہیں ہو گئی. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, کیا میں اللہ کی نائتوں سے غافل ہوں. اور حقیقت ہے کہ اس کتاب کو سمجھے بغیر جب تک پڑھا کیفیت کچھ اسی قسم کی محسوس ہوئی تھی کہ غفلتوں کے دن ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو ہم اپنے اندر لے کر آتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ٹھکانہ کیا ہے, اولئک ما باہم النار بما کانوا یکسبون, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے ان برائیوں کے جرم میں جن کو وہ کماتے تھے, یعنی اپنے غلط عقیدوں اور اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے جو عمل کیے उसकी सजा इनको जहन्नुम में ले जाकर दी जाएगी। इसके बारक्स बड़ी खूबसूरत आयत है, हाईलाइट कीजिएगा, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम। और ये भी हकीकत है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने इन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई है, पूछिए साथ साथ खुद से, क्या मैंने इस किताब की सच्चाइयों को दिल से कबूल कर लिया। देखिए ये पहला सफर होता है कुरान में जहां जो आयत आ रही है उसको दिल से कबूल करें। पहले दिन हमने ये बात की थी, जो सुनूंगी उस पर अमल करूंगी, हर वो चीज जो मेरे सामने आएगी मैं उस पर लब्बैक कहती जाऊंगी। तो फिर खुद से पूछते हैं, क्या मैंने इस किताब की सच्चाइयों को कबूल कर लिया। और नेक अमल करते रहे, पूछिए क्या मैंने नेक अमल करने शुरू कर दिए। करती तो पहले भी थी, क्या अब कंटिन्यूटी आ गई, पहले भी करती थी लेकिन शिद्दत नहीं थी, अब क्या शिद्दत आ रही, इंटेंसिटी बढ़ा ली। इन्हें इनका रब इनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। क्या बात है, आप कहते हैं कि हम तो किसी और चीज की वजह से सीधे चलते हैं। यहाँ नोट कीजिएगा, यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम, ईमान है जो आपका मेरा नेविगेटर है। एक्सीलेटर होता है ना गाड़ी में, बस आप लिख लीजिए ईमान इज योर एक्सीलेटर। जितना एक्सीलेटर दबाएंगे ना उतनी गाड़ी रन करेगी, भागेगी। अंदर ईमान है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अंदर की खैर होगी, आप भागेंगे चलेंगे, आपको हर नेकी छोटी लगेगी। और अगर ईमान का लेवल कम है, एक्सीलेटर लूज है या टाइट है, कुछ का टाइट होता है, वो कौन से लोग हैं कि जिनका दिल नहीं करता नेकियां करने को, तो फिर तो कोई नेकी भी नहीं होगी। देखिए ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा हर रोज 17 बार कहे कि एक दिन सिरातल मुस्तकीम और अल्लाह उसकी ये दुआ कबूल ना करे, आखरत में उसको इसके बदले में खैर ना दे और दुनिया में अल्लाह ताला उसको इसके बदले में कामयाबी ना दे। तो जितना अकीदा और ईमान दुरुस्त होगा ना उतनी हिदायत ज्यादा होगी। बस लोग कहते बताने वाले ही अच्छा नहीं बताते, इनको बताना ही नहीं आता, नींद आ जाती है, चीखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बताने वाले की वजह से नहीं। लिख लें ये जुमला, आपको यह फायदा होगा, बताने वाले की वजह से नहीं, ईमान की वजह से हिदायत मिलती है। हाँ ये कह लीजिए कि कोई अच्छी बात बताता है तो ईमान वालों को फायदा हो जाता है, वरना बताने वाला सोने जैसी बात करे, प्यार के साथ बात करे, मोहब्बत से करे, वो कहते हैं कि मर्द नादा पे कलाम में दिल परे बेअसर। इसके बरक्स कट सकता है फूल की पत्ती से हीरे का जिगर। क्या अल्लाह के नबियों से ज्यादा भी किसी ने खूबसूरत बात की होगी, लेकिन फिर चंद लोग क्यों माने सिर्फ क्योंकि अंदर ईमान नहीं थी। तो दिल वो दरवाजा है जिसका हैंडल अंदर की तरफ से खुलता है। आपको कोई कितना भी देना चाहे, जब तक आप अंदर से अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलेंगे हिदायत नहीं मिलेगी। अच्छा लगेगा आपके कानों को, अच्छा लगेगा किसी की अच्छी बात सुन के, लेकिन हिदायत तब मिलेगी जब आप दिल खोलेंगे। चलिए खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ये सारी चीजों से फायदा हो? और अगर होगा, कोशिश है, इरादा है, अल्लाह सुब्हान तआला जरूर आपकी मेरी मदद करेगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद करे। जब ऐसे लोगों को हिदायत करके अल्लाह जन्नतों में पहुंचा देगा, कौन सी जन्नत है? तजरी मिन तहतिहिम अल-अनहार फी जन्नातिन नईम, नेमत भरी जन्नतों में इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां उनकी एक सदा होगी। इमेजिन तो करे जरा, जन्नत को इमेजिनेशन में लाए, पहुंच गई ईमान की वजह से जन्नतों में, जन्नत और नेमत वाली। दावाहुम फीहा सुभानक अल्लाहुम्मा, एक पुकार है, पाक है तू अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वतहियतुहुम फीहा सलाम, और उनकी दुआए मुलाकात क्या होगी? सलामती हो तुम पर, हाय और बाय नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में भी लोगों को सलाम अलैकुम कहने के आती थे। तो जन्नती जन्नत में जाकर एक दूसरे को सलाम करेंगे। और वाखिरु दावाहुम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इनकी हर बात का खात्मा इस पर होगा कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए। देखिए ये एक खास कल्चर है दुनिया में भी, जब इंसान को अल्लाह से पहचान होती है ना, तो उसकी डिक्शनरी में हर जगह अल्लाह आ जाता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कोई गुनाह हो गया अस्तगफिरुल्लाह, कोई अच्छी चीज देख ली माशाअल्लाह, कोई काम करने की नीयत की इंशाअल्लाह, कोई नेमत याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्यारा सा सीन दिख गया, सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दुनिया में जब लफ्ज अल्लाह आपके मेरे दिल में बसा होगा ना, तो आप देखिए जन्नत में जाते ही क्या किया, सुभानक अल्लाह, सलाम की तो सलाम किया, सलाम अलैकुम, और जब बात खत्म करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये दुनिया में नहीं हो सकता हमारे साथ? हम हर बात के जवाब में क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल देती हूँ मैं आपको, खास तौर पे बुजुर्ग खवातीन या ब्रदर्स, ब्रदर्स को तो कम ही सुना है, औरतों को मैंने देखा है कि जिनको अल्लाह ने सारी जिंदगी सब्र शुक्र दिया होता है, और बुढ़ापे में बीमारियां लग जाती हैं, फिर लोग कहते हैं क्या हाल है आपका, वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नींद रात को ठीक से आई अल्हम्दुलिल्लाह, अब कैफियत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्द तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनसे 10 बातें पूछे, वो एक ही बात कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ देखिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आ रहा पूरा, पीछे हम सूरत अल आराफ में पढ़ चुके, पहली बात ही वो यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तो हकीकत यह और हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलौल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देगा, पूरे दीन का खुलासा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं और आप दिल से अल्लाह से खुश नहीं है तो हम कभी खुश लग नहीं सकते। खुशी ऊपर से पोज नहीं की जाती, ये अंदर से फूटती है, और अंदर से सिर्फ वही शख्स खुश होगा जो दिल की गहराई से अपने नसीब पर राजी है, और कहेगा कि मेरे मालिक तूने जो दिया तेरा लाख शुक्र है, जो नहीं दिया उस पर तेरा करोड़ शुक्र है, जो दिया वो मेरी औकात से ज्यादा है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आदत बनाइए किसी से शिकवे नहीं करने, दुखों के, बीमारियों के, तकलीफों के, परेशानियों के। जब भी कोई मुझे कुछ कहे, यानी अपने लिए एक्टिविटी लिख लें, जब कोई मेरा हाल पूछे, मेरी बात पूछे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आप देखेंगे बातें इतनी कम हो जाएंगी, लोग आपको कुरेदेंगे, अच्छा सुनाओ ना फिर और क्या हुआ था, अच्छा सास ने तो नहीं कुछ कहा, अच्छा शौहर कैसे हैं। आप इमेजिन करें आप अपनी बच्ची को ये तरबियत दे के भेजते हैं ससुराल में कि बेटा हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आप इमेजिन करें सुबह कमरे से निकलकर नीचे आने, सास ससुर से बातें करने से लेकर शौहर के शाम को आकर हाल चाल पूछने पे, अगर वो बच्ची हर एक बात दूसरी जो भी उससे पूछी उसके एंड पे क्या अल्हम्दुलिल्लाह, कौन है जो उससे प्यार नहीं करेगा। ये शुक्रगुजार लोग होते हैं, कदरदान लोग होते हैं, और इससे भी दिलों में जगह बनती है। हम लोगों का शुक्र अदा करते हैं तो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। लेकिन सारे ऐसे नहीं है, इसलिए अब आगे अल्लाह ताला कुछ और लोगों की कैफियत देते हैं। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रस्तिजालहुम बिलखैर, अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं। इमेजिन करें, यानी दुनिया मांगने में जितनी जल्दी करते हैं अगर अल्लाह ताला बुरा मामला भी करता है, यानी जैसे वो चाहते हैं कि दुआएं कबूल हों इसी तरह अगर इनकी बद दुआएं भी कबूल हो जाएं तो दुनिया के हालात क्या होते। फरमाए तो इनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी जाती, मगर ये हमारा तरीका नहीं, इसलिए हम इन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते इनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। इंसान का हल ये है कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आ पड़ता है तो खड़े और बैठे और लेटे वो हमको पुकारता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसे चल निकलता है गोया कि इसने कभी किसी बुरे वक्त में हमको पुकारा ही ना था। इसी तरह से हद से गुजर जाने वालों के लिए इनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए, ये भी इंसान की फितरत है। और वो क्या है, दान अली जम्बी, जब कोई गम लगता है तो लेटे बैठे हाय अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माफ कर दे दिस एंड दैट। कभी आप बच्चों को तो देखा करें जब पेपर हो रहे होते हैं तो उस वक्त वो बच्चे जिन्होंने कभी ग्रुप्स में आपको सलाम ना दुआ किया वो कहेंगे पुप्पो दुआ करना मेरा कल पेपर है, और वो मासूम शक्लें बनाकर रोने वाली के बेतमी दुआ कर देना है उस वक्त इंसान के दिल को होता है ना, अम्मा दुआ करो बस अम्मा मैं पास हो जाऊँ हाँ क्या करूँ। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब एक बंदा इस तरह से अल्लाह को पुकारता है दुख में, तो जब दुख टल जाता है तो क्या उस अल्लाह की जरूरत नहीं रहती, फिर रिजल्ट की पार्टी में अल्लाह को क्यों भूल जाते हैं, फिर अगली जिंदगी के फैसले करते वक्त अल्लाह को क्यों नहीं याद रखते। तो याद रखिए कि अगर हमें अल्लाह की जरूरत है और ये अल्लाह की जात है जिसके हमें हर लम्हे जरूरत है, तो फिर क्या हम आज से अपने बच्चों की इस तरफ नहीं जोड़ेंगे, अपने बच्चों की तरबियत इन आयतों की रोशनी में कर दें कि बेटा सिर्फ दुख में रब को नहीं पुकारना खुशियों में भी पुकारना। कभी किसी बच्चे से पूछे बेटा आप नमाज पढ़ते हैं, कहते हाँ वो इम्तिहान के दिनों में पढ़ता हूँ। भाई इम्तिहान के दिनों में तो आप ना पढ़ा करें, आपके पास पहले ही बड़े काम होते हैं। नहीं, फिर वो अल्लाह से काम है ना। तो ये भी एक ख्याल है हमारा कि अल्लाह से काम है तो दुआ कर लो, अल्लाह से मांगना है तो कुछ लेना है तो उस दिन बात मान लो, और जिस दिन हम दुनिया में सब कुछ पा के खुशियों भरी किसी महफिल में बैठे, आज अल्लाह की क्या जरूरत है, छोड़ो मगरिब तो रोज आती है, अब यहाँ इस पार्टी हॉल में उठ के नमाज पढ़ी तो ऐसे ही ऑकवर्ड लगेंगे। हमें दूसरों की क्या जरूरत है, हम तो अपनों के बीच में भी अपनी नमाजें छोड़ते हैं। तो हमें अपने बच्चों की शुरू से तरबियत करनी है। और याद रखिए कि हमारे बच्चे मिट्टी के नहीं है, ये जीते जागते इंसान है। मिट्टी के होते तो मर के मिट्टी हो जाते। इस दुनिया के रिजल्ट की जितनी फिक्र है उतनी हमें इनकी आखिरत की भी फिक्र करनी है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे दे। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वलकद अहलकनल कुरून मिन क़ब्लिकुम, और इसी तरह हमने हद से गुजर जाने वालों के लिए इनके करतूत खुशनुमा बनाकर पेश कर दिए। लोगों तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की, और इनके पास इनके रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही ना दिया। इस तरह मुजरिमों को इनके जराइम का बदला दिया करते हैं। अब इसके बाद हमने तुमको जमीन में जगह दी ताकि हम देखें कि तुम क्या करते हो। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ली नंजुरा कई फता मलून, ताकि हम देखें कि तुम क्या करते हो। पिछले लोग अपने इम्तिहान के पर्चे देके जा चुके, अब तुम्हारे इम्तिहानों का वक्त है। इसलिए अपनी फिक्र करो, अपने आप को चेक करो कि इस वक्त मैं इस दुनिया के इम्तिहान के रूम में जो बैठा हूँ, क्या मैं पास होने के नंबर दे रहा हूँ। मैं अपनी जुबान पे इसको कौमे उम्मत मुस्लिमा के नाते से अगर बोल दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि कौम मूसा चली गई, उनका इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो गया। कौम ईसा चली गई और बड़े बड़े नबियों की कौमें चली गई। अब मेरे और आपके इम्तिहान का फिक्र है, वक्त है। अब देखिए डेट शीट होती है ना, कभी किसी क्लास के इम्तिहान हो रहे होते हैं, कभी किसी और सब्जेक्ट के। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान हो रहा है, और अल्लाह ताला हर दिन एक एक चीज को सामने रख के देख रहे हैं कि कौन कैसे अमल करता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक दे। वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैजिनात, जब इन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं, साफ साफ के क्लियर मैनिफेस्ट, कोई होल नहीं, कोई झोल नहीं है, तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते। यहाँ आपको ये लफ्ज भी बार बार दिखेगा, अल्लज़ीन ला यरजून लिकाना, और हकीकत है अल्लाह से मुलाकात का यकीन बंदे से काम लेता है। तो फरमाया ऐसे लोग जिनको हमारी मुलाकात की यकीन नहीं है वो क्या कहते हैं, इसको हाईलाइट कीजिएगा। मुतालबा बहुत बड़ा है, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन क्या कहते थे, ईति भी कुरआन गैरी हाजा, या तो इससे अलावा कोई और कुरआन ले आओ, औ बद्दिल हो, या इसी को बदल दो। ये था वो मुतालबा जो अल्लाह के नबी सल्लम पर मक्की दौर के दरमियाने दौर में शुरू हो गया था। कहते थे ये कुरान तौबा तौबा इतना मुश्किल, हमें ये नहीं चाहिए, इसके सिवा कोई और लो, चेंज इट, वी डोंट लाइक दिस बुक, कोई और लेकर आओ। अच्छा कोई और तो आ नहीं सकती क्योंकि ये अल्लाह ने देना है, मैं नहीं ला कहा, अच्छा फिर ओके चेंज इट। अल्लाह अकबर, ये वही बात है जिसको कहते हैं कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। किस कदर जरूरत है काबे के इमामों की, कुछ इस तरह के अशआर हैं। लेकिन हकीकत है जो कल मुतालबा था आज भी वही मुतालबा, पुरजोर मुतालबा, क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाओ, इस किताब को बदल दो। और आज लोग इंसानों से मोहब्बत और उनकी दोस्तियों में यही मुतालबे फिर करने लगे। देखिए इंसानों से मोहब्बत करना अच्छा होता है, लेकिन इंसानों को पूजना जुर्म है। आज लोग ह्यूमन वर्शिपर हो गए, वो कहते हैं लोगों को पूजो, ऐसी चीज जो है वो इंसान को दूसरी तरफ लेकर जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करना। आपको होता है कि आज मुतालबे आम है, एक किताब छपी है वेस्ट में जिसका टॉपिक क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम डज वेस्ट लाइक्स, कि जरा इनसे पूछो कि वेस्ट को कौन सा इस्लाम पसंद है, फिर हम इस तरह की बात करते हैं। आज आप खुद देख लीजिए आज कितने कुरान हैं प्रैक्टिकली जो दूसरों को नजर आए। आज हम खुद देखिए कि इस किताब पर हम अमल करते हुए डरते हैं, हम कहते हैं फिर हम दूसरों को अच्छे नहीं लगेंगे। और कितनी आसानी से अगर किताब बदलने वाली होती तो 13 साल की मारे तो ना खाई जाती। मक्का के 13 साल में सिर्फ यही मुतालबा था, इस पैगाम को बदलो। एक जुमला बोलूंगी, मक्का वालों की दुश्मनी पैगाम से थी, दे डोंट लाइक द मैसेज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी सूरत दिख रही है। मदीना वालों की दुश्मनी मैसेंजर से थी, उनकी दुश्मनी प्रॉफिट से थी, इसलिए कि उनको तासुब आ गया और वो अपनी कौम और बिरादरी में आ गए। अगर अल्लाह के नबी ने उनके इस मुतालबे में कि एक साल तुम हमारे खुदाओं को मान लो, दूसरे पे हम तुम्हारों को मान लेंगे, ये बात मान ली होती तो कोई जंग ना होती, बदर उहद से लेके तबूक तक का सफर ना होता। सिर्फ इतना सी उनका प्रॉफिट का कॉन्फ्लिक्ट था कि बस ये बातें ना किया करो, ये जो बातें हमें तुम अच्छे लगते हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम सादिक हो, तुम अमीन हो, लेकिन ये बातें ना किया करो। और अगर हर आसानी को इस किताब में लिखा जाता तो फिर जिहाद भी नफ्स क्या था, फिर मेहनत क्या थी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस कुरान को कांट छांट कर हर एक अपने साइज का बना ले। वन साइज फिट टू ऑल ये कुरान नहीं है। वी नीड टू रिड्यूस द वेट ऑफ आवर सिंस, अपने गुनाहों का वजन कम करके मुझे और आपको इस किताब में फिट होना है। आप ये नहीं कह सकते कि आज के दौर में इसके बगैर गुजारा नहीं, लेना ही पड़ेगा। नहीं, आपको काटना पड़ेगा, ट्रिम करें अपनी ख्वाहिश को। हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं बनाना, इसलिए कि अल्लाह सुबहान तआला यही बताता है। देखिए ऊपर बात हुई ना, लीनानजुरा कई फतामल, हम तुम्हें देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, गोया कि हम सब एक एग्जामिनेशन हॉल में। ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है, ये फन प्लेक्स नहीं, पार्टी प्लेक्स नहीं है। अब वहां आकर आखिर कुछ तो दाखिला होगा ना, अगर दुनिया कमरा इम्तिहान है तो कोई सिलेबस भी तो होगा ना, तो सिलेबस कुरान है, तो कोई टीचर भी तो होगा, तो टीचर मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो कोई एग्जामिनर भी तो होगा, तो अल्लाह की जात है। सीधी सी बात है, हम मुसलमानों की तो डिक्शनरी इतनी छोटी है, तो अल्लाह ताला हम सबको इसका एहसास दिलाता है। आज भी लोग यही डिफेंस लेकर कुरान पढ़ना चाहते हैं। आज आप सोचिए कि अगर आपकी बच्ची को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, कितनी मुबारकें आती हैं, लोग केक लेकर आएंगे, फूल लेकर आएंगे, मुबारक हो। और अगर आप खबर दें कि मैंने कुरान का कोर्स ज्वाइन कर लिया, कितने फूल आते हैं, हो सकता है कांटे ही आ जाए। और बल्कि ताने आ जाए, सोच लो दाखला ले रही हो, बड़ी कमिटमेंट होगी। अच्छा देखो, खबरदार दाखला तो ले लिया, अब अमल ना करना। मुझे पता है अब तुम बस कुरान पे लग गई, तब निंजा बन जाओगी, और ये टेंट पहन के मेरे घर ना आना, और मुनाफ़कत किसको अब कहेंगे। बस जब तो माँ बाप अपने लिए सोचते हैं, बस माँ बाप को दुख होने लगता है जब उनके बच्चे बच्चियां दीन पे अमल करने लगते हैं। और कई ऐसे बच्चे अपने सवालात शेयर करते हैं दीन वालों से कि बताएं, हम औरों को तो बात की बात है, अपने माँ बाप को कैसे समझाएं। वो कहते हैं बेटा तुमने तो हमारे अरमानों पे ओस ही डाल दी, ये दाढ़ी रखकर क्या बड़े बन गए। आज हम अपने दिल से पूछें, अमूमन उम्मत मुस्लिमा के लोग अपने बच्चों का क्या फ्यूचर चाहते हैं? कितने माँ बाप जिनके दिल में ये अरमान है कि हमारे बच्चे खादमे कुरान बने, खादमे हरमैन और शरीफ़ैन बने। हम क्या कहते हैं, बहुत हाफिज बने, हाफिज सब बन जाएंगे लेकिन दीन पे आमिल नहीं बनने पाते। तो ये दुआ कीजिए कि आज इस किताब से हमें बात समझ आ जाए, ये जितना ज्यादा हमारी जिंदगी में आएगा उतना फायदा होगा। और ये बात कर ना लाकर अपनी जिंदगी में हमने अल्लाह की मदद को अपने से दूर किया हुआ है, तो ये किताब चेंज नहीं होगी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुद, जिस दौर में मुसलमानों ने कुफार को खुश करने के लिए इस किताब के अहकाम को बदला, बी लिबरल, बी मॉडरेटेड और बी दिस और असिमिलेट सोसाइटी, और जैसा देश और वैसा बिल, अल्लाह के नबी अरब में है तो अरबी बन गए, हम वेस्ट में है तो वेस्टर्न बन गए, ये सारे मुतालबे आज भी हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इस किताब की मोहब्बत दे दे, हम इसके ऊपर यकीन से अमल कर सकें। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, नबी इनसे कहो, मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली कर लूं, मैं तो बस इस वही का पैरोकार हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का डर है। पीछे भी इससे मिलता जुलता जुमला सिखाया गया आपको, मुझे बताया कि डोंट कम इन पीयर प्रेशर, जब लोग तुम्हें ड्राएं, प्रेशर डालें, देखो बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे, देखो बेटे को कोई लड़की नहीं देगा, तो उस वक्त आप ये बोल दीजिए कि मैं डरती हूं इस बात से कि अपने रब की नाफरमानी करूं और उसका अजाब आ जाए। इन्नी अखाफ ना सही तो रब्बी अजाब यौम नज़ीम। देखिए हम लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं, अल्लाह के प्रेशर में क्यों नहीं आ पाते? और कहो अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी कभी खबर ना देता। आखिर इससे पहले भी तो मैं एक उम्र तक तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक छोटी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे। बात यकीन न हुला युफलिहुल मुजरिमून, यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पाते। नोट कीजिएगा यहाँ मुजरिम कहा क्रिमिनल का है, सिनर नहीं कहा, गुनाहगार नहीं, क्योंकि जब लोग बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से अपोजिट होकर तो फिर वो अल्लाह के मुजरिम है। दुनिया की अदालतें मुजरिमों के साथ क्या करती हैं, जेल में भेजती है ना, तो जहन्नम अल्लाह की जेल है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम मुजरिम बनकर नहीं मोमिन बनकर कल अल्लाह के पास आए। वयाबुदून मिन दूनिल्लाही, ये लोग अल्लाह के सिवा इनकी परस्तिश कर रहे हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना नफा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के हम हमारे सिफारशी हैं। ऐ नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे ना वो आसमानों में जानता है ना जमीन में, पाक है और बालों पर तरह इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इब्तदान सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए। इसको हाईलाइट करें, जो बंदा आपको कहे ना कि मसलक जरूर होना चाहिए उनको याद दिखा दें। जो कहते हैं तुम्हारी कोई जमात कोई गिरोह कोई फिरका जरूर होना चाहिए, आप उनसे इस आयत का मतलब पूछ रहे हैं। अल्लाह कहते हैं सब एक थे और सब मुस्लिम थे, मवाहिद थे। इसमें एक और चीज का भी इरादा है, जो लोग ये सोचते हैं ना कि किस तरह से लोग दुनिया में पहले इख्तलाफात में थे फिर एक हुए, हालांकि इस्लाम सबसे ओल्ड रिलीजन है। कई लोग ये कहते हैं इस्लाम इज द न्यू रिलीजन, वो ये सोचते हैं कि इस्लाम मोहम्मद सल्लम के आने से शुरू हुआ, हालांकि ये बात इससे ऑपोजिट है कि इस्लाम का सिलसिला मोहम्मद सल्लम पे खत्म हुआ। आप इसको एक ट्रेन के साथ रिलेट कीजिए, एक ट्रेन की डिफरेंट बोगियां डब्बे होते हैं ना उसके अंदर, तो 300 बोगियां हो अगर बिलफर्ज 313 या वट है, पहली बोगी में अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है ना, तो सेकंड में चलते चलते इब्राहिम, फिर इसी तरह से हजरत इस्माइल मूसा ईसा और मोहम्मद सल्लम उस ट्रेन की आखिरी बोगी है। तो ये इस्लाम का सिलसिला नबी सल्लम से पहले से चल रहा था। फिर फरमाया अगर तेरे रब की तरफ से ये बात पहले से तय न कर ली गई होती तो जिस चीज के बारे में ये इख्तलाफ कर रही इसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो कि गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। लोगों का हाल ये है कि एक मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मुकाबले में चालबाजियां शुरू कर देता, ये भी एक आदत है। गुर्बत थी तो रब से ताल्लुक बड़ा अच्छा था, माल नहीं था तो खुश थे अल्लाह के साथ थे, तकलीफ थी तो बहुत अल्लाह से रोज चलते थे, तस्बीहें में निकल आई जाए नमाज भी खुल गई, जो ही तकलीफ खत्म हुई तो फिर वापिस वही होशियारियां। देखिए दूसरी दफा ये मजमून आ रहा है और मैं और आप इसकी रोशनी में अपने रवैयों को चेक करें। एक क्वेश्चन करती हूँ, वो आपकी सोच को इंशाल्लाह फोकस कर देगा। खुशियों के वक्त मेरा क्या रवैया होता और तकलीफों में क्या होता, ये दो चीजें आपको आपके ईमान का टेम्परेचर बताएंगी। क्योंकि हदीस में आता है अजबुल अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, खुशी मिले तो शुक्र करता है और शुक्र का बदला जन्नत है, तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और सब्र का बदला जन्नत है। और मुझे ऐसे लगता है कि शुक्र और सब्र जन्नत में जाने के दो दरवाजे हैं, या उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ या इससे दाखिल हो जाओ, अंदर जन्नत है। जिंदगी में इस चीज को अपने लिए बुनियाद बना लें अपने अमल की। कोई भी हाल हो मेरा, मैंने अल्लाह की नाफरमानियां नहीं करनी। और आयतों के साथ चिल्लाकियां क्या है, होशियारियां के आयतों को बदल दो। कार्ड पे लिखते हैं निकाह मिन सुन्नती, अब तो वो भी नहीं लिखते मेरा ख्याल है, लेकिन किसी दौर में लोग लिखते थे निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मुझसे नहीं। और उसके बाद उस कार्ड के दावत नामे के बाद जब लोग आते हैं तो उस एक महफिल में अल्लाह के नबी की इतनी सुन्नतें टूटती हैं। कार्ड पे क्यों लिख ली आयत और हदीस या कुछ भी मफहूम, कि जरा बरकत तो हो जाए। जब अगर निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, एक सुन्नत तो पूरी की, तो उसको पूरा करने में कितनी सुन्नतों को ज़िबा किया। देखिए कभी बहुत लिबरल से लिबरल बाप को भी कोई कह दे क्या जरूरत है मौलवी साहब की, भेज दो ऐसी बच्ची को लड़के के साथ, इतनी और रस्में शादी में कि निकाह का वक्त ही नहीं है, कोई भेजता। मेरा ले बिगड़े से बिगड़ा शख्स भी कहेगा कि मैं कभी भी नहीं भेजू, तो क्या बुला के मौलवी साहब से कबूल ही जाब कबूल है कबूल है कबूल करा के एक बच्ची अजनबी के हाथ भेज दी जाती है। क्या है सुन्नत है। तो जहां इतनी सी बात आप गवारा नहीं कर सके सुन्नत के खिलाफ, तो क्या बाकी चीजों में आप और मैं इसका सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी इस तरीके से अपने फंक्शंस और अपने प्रोग्राम और शादियां ब्याह करते होंगे जैसे आज उम्मत मुस्लिमा ने करना शुरू कर दिया। यही बात जहां बताई जा रही है कि आयतों के साथ जब हम इस तरह का मजाक करते हैं, आधी अपनी मर्जी का दीन मान लेते हैं और आधा नहीं मानते। कोई कहे वलीमा ना करो गुस्सा करेंगे, कोई कहे मेहंदी ना करो तो गुस्सा करेंगे, आपस में बात नहीं। यदि सुन्नतों को खुद साख्ता रस्मों के बराबर खड़ा कर दिया तो अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि वो हमारी इसलाह कर दे। फिर फरमाए वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है, चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मवाफिक पर, यानी बहुत खूबसूरत हवा थी, सूटेबल थी, जिस रुख पे चलनी थी वैसे चल रही है, जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मवाफिक पर फरहों शादा सफर कर रहे होते हो, और फिर यकायक बादे मुखालिफ का जोर होता है, अपोजिट विंड्स चलती हैं, अगेंस्ट चलती हैं जो तुम्हारी कश्ती के, और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगने लगते हैं और मुसाफिर समझ जाते हैं कि तूफान में घिर गए। इस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके इससे दुआएं मांगने लगते हैं। क्या कहते हैं इसको हाईलाइट कीजिएगा, लाइन अन जैतना मिन हासिही, अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी, अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्र गुजार बंदे बनेंगे। बड़े मीसने और मस्कीन से बन के ये दुआएं करते हैं, मगर जब वो इनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर, यानी हक से हटकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। नोट कीजिए लफ्ज बगावत को, क्योंकि खुशियों के मौके पे बगावतें आम हैं, बागी जिंदगी हो जाती है, ऐसे लगने लगता है कि इसके बाद अब अल्लाह ताला से किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं या यूहन्ना सुन्ना मा बग्युकुम अला अन्फुसिकुम, ए लोगो तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। जो किसी मुल्क के कानून में बगावत करता है, एजिटेशन करता है, उसकी सजा उसको खुद भुगतनी पड़ती है। बाकी रह गई ये जो सारी सरकशियां उसकी वजह क्या, मताल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ पलट कर आना है। इस वक्त हम तुमको बता देंगे कि तुम क्या कुछ कर रहे थे। इसको हाईलाइट करें, आज भी पता है हमें लेकिन कल ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। आप देखिए कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा तूफान जरूर आता है, चाहे वो औलाद की तरफ से मुसीबत की सूरत में आ जाए, शोहर बीवी का झगड़ा हो, कोई खानदानी मामला हो, ऐसे वक्त जिसमें हमें रब याद आता है, फिर हम उस वक्त दुआएं करते हैं, अल्लाह इस मुश्किल से बस निकाल दे, फिर देखना। एक सहाबी थे करमा, अबू जहल के बेटे थे, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन चंद लोग जो आज के दौर में आप कह लीजिए कि बागी थे या जिन्होंने बहुत सारे कानून तोड़े हुए थे, उनके लिए आपने कहा कि वो तुम्हें जहां मिले उनको पकड़ के लाओ, उसी में करमा का नाम भी था। इनकी बीवी ने इनको मशवरा दिया कि यहां रहेंगे, पकड़े जाएंगे, यहां से चलते हैं, निकले बाहर चल पड़े, जद्दा के रास्ते गए, वहां एक कश्ती तैयार थी हबशा जाने के लिए, उसमें बैठ गए कि चलो मैं इस मुल्क से भाग जाता हूं। खैर जब भाग के बीच में पहुंचे तो तूफान आ गया। अब मक्का के लोगों का रुझान क्या था कि जब समंदरों में तूफान आता और कश्तियां डोलती तो उस वक्त फिर कहते थे कि देखो ये जमीन वाली देवियां और बुत हमारे काम नहीं आएंगी, अब ऊपर वाले को पुकारो। उन्होंने वहां ये बात शुरू कर दी। जो ही उन्होंने ये बात की, इकरमा का दिल खुल गया, का यही बात तो अल्लाह का बंदा कहता है कि जो समंदर में नहीं तुम्हारी मदद को आ सकती देवियां, वो जमीन पे तुम्हारी मदद कहां करेंगी, और जो रब समंदरों की गहराइयों में तुम्हें बचा सकता है क्या वो जमीन पे नहीं बचाएगा। बस इन्होंने चुपके से अपने रब से बात की, क्या रब मैं तुझे पुकारता हूं, अगर तू मुझे इससे निजात दे दे तो अब आगे नहीं जाऊंगा पीछे जाऊंगा। और वही हुआ, अल्लाह के हुक्म से समंदर में तूफान थम गया, अब ये वहां से पीछे आए और अल्लाह के नबी सल्लम के पास आके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जिंदगी में ऐसे तूफान और सदमे रहमत बन जाते हैं जो हमारे कदमों को पलट कर दीन की तरफ ले आते हैं। सरकश होते, बाही होते हैं इंसान, रिबेलियस होते हैं, एक तकलीफ आती है, कोई बीमारी आई, बेड रिडन हो गए, कमर में चोट पड़ गई, उठ ही नहीं सके, झुक ही नहीं सके, बैठ ही नहीं सके, तकलीफ में अल्लाह ला के ऐसे हैंड टू माउथ करके बिठा देता है, तो ये बुरी बात नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। देखिए वो सेहत, जवानी, माल जो हमें बागी कर दे, रिबेलियस कर दे, वो हमारे लिए जहर कातिल है, और वो तकलीफें और मुसीबतें हमारी उस्ताद है जो हमें अल्लाह से जोड़ दें। शर्त एक है कि हम उनसे सबक हासिल कर लें। अब अगली आयत में बहुत खूबसूरत तरीके से दुनिया की हकीकत है। इन आयतों पर एक लेक्चर भी है, मेरा अपना फेवरेट लेक्चर है, और जिंदगी एक ढलता साया पुराने लेक्चर्स में था, आज भी मुझे उसका एक एक लफ्ज याद है। अगर आपको भेज सकें ये लोग तो ईमेल में भेज देंगे। और कल हमने एक दर्स शाम को किया अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में, तो ये आयतें नहीं ली थी, सूरह हदीद की ली थी, लेकिन टॉपिक यही था, तो वो भी अच्छे माहौल में हुआ, तो बात दिल में उतरी। लेकिन कम अज कम इनको जरूर भेजिएगा, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। अब इस आयत को आप दिल पे लें, इस वक्त इसकी डिटेल में नहीं जाएं, लेकिन आप इस टॉपिक को जहन में रखें, जिंदगी एक ढलता साया, लाइफ इज अ फेडिंग शेडो। एक दिन को सोच लीजिए, सुबह कैसे आहिस्ता आहिस्ता सूरज चढ़ता है, और जब सूरज चढ़ के पूरी पीक पे आता है, हर चीज खुल के दिखती है, और उसके बाद फिर साए ढलने शुरू होते हैं, और शाम के करीब ऐसे लगता है कि हर चीज जा रही है। यही है मेरी और आपकी जिंदगी की कहानी। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समा, फरमाया दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो। 3 सेकंड सोचे, दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी आयतों से गफलत बरतते हो। टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं इन आयतों को पढ़ने का। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया, तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और इंसान जिसे आदमी और जानवर सब खाते खूब घनी हो गई। फिर ऐन इस वक्त जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सबरी खड़ी थी, और इनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं। ये वो दौर होता है जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, मिसें भिगतने लगती हैं, लड़के जवान हो रहे हैं, जिस्म पे बाल आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मूछें दाढ़ी, तो माँ बाप कहते हैं माशाल्लाह मुन्ना बड़ा हो गया, अब बेटा बड़ा हो रहा है, उम्मीदें लग जाती हैं, चलो अब हाथ बटाएगा, चलो अब इसकी शादी करेंगे। और हकीकत है कैसी उम्र में बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, शक्ल से तो वैसे अजीबो गरीब हो जाते हैं, बढ़ने चढ़ने का मौका होता है, कुछ भी उसमें नहीं ऐसी बात लगती, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें उठती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इस तरह लोग उसको देख रहे होते हैं कि इस वक्त लगता है कि बस अब हम इनसे फायदा उठाएं, फिर घबरू जवान बन जाते हैं, ऐसे जवान सेहतमंद, फिर जॉब भी मिल जाती है, फिर डॉक्टर भी बन जाते हैं, फिर कुछ भी होता है, और यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया। अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह आप सबके बच्चों की हिफाजत करे, कभी किसी को अपने जवान बच्चे की मौत ना दिखाए, लेकिन ये जवान बच्चे की मौत की खबर है। इधर खड़ी फसल कट रही है, एक होती फसल अपने दौर में जाकर भूसी बन के कटे, वो तो फितरत का असूल है, बूढ़ों ने तो दुनिया से जाना ही है, और वो तैयार भी होते हैं किसी तरह से, लेकिन जब जवानी में किसी बच्चे को बूढ़े बाप के कंधों पर लेटा देखे कोई, तो सभी रो पड़ते हैं, लेकिन ये मुमकिन है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। और हदीस में आता है कि क्यामत के करीब जवानों की मौतें कसरत से होंगी। आज भी आप देखिए, बूढ़े को हार्ट अटैक होगा ना तो वो बच जाएगा, जवान को होता है वो नहीं बचता, क्योंकि जिस्म की डिमांड ज्यादा होती है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं रात या दिन हमारा हुक्म आ गया, और हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया गोया कि कल तक वहां कुछ रहा था, वहां कुछ था ही नहीं, सब खत्म। फिर क्या उदासी छाती है, कभी मैयत वाले घर की खामोशी से कोई पूछे क्या आज इतनी खामोशी क्यों है, उस वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। सोचिए अता हम रोना लई लनऊ नहारा, फिर उस वक्त पूछिए प्रेशर क्या अच्छा है, पीयर प्रेशर। मैयत वाले घर में कभी पूछिए लोगों से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, लोगों के प्रेशर में आके अल्लाह को नाराज करना है, नहीं। ईमान वाले पर सबसे बड़ा प्रेशर अल्लाह का प्रेशर होता है, पीपल प्रेशर नहीं, गॉड प्रेशर। तो ये मत कहिए कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कहिए कि अगर ये मर गए तो इनका क्या होगा। जवानों को सोचने का है यादें, किसी लम्हे जा सकते हैं, और याद रखिए कि आज और मैं अगर इस दुनिया में कामयाब हो भी गए, जवान होने तक बच्चे ने पढ़ लिया, ग्रेड्स ले लिए, ए ले लिए, जॉब मिल गई, कब्र में साथ क्या जाएगा, खाली हाथ। मसलन देखिए कि पाकिस्तान में एक शख्स करोड़पति था, रुपए को डॉलर में नहीं बदला, और अमेरिका आ गया, क्या यहां वो एक चाय का कप पी सकता है, आम दुकानदार खोखे वाला उसे रुपया शायद नहीं लेगा। आज तो कई सहूलतें आ गई कार्ड्स की, इमेजिन कीजिए कि अगर करेंसी को उस मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट ना करें तो एक चाय का कप नहीं पी सकते। इसी तरह अगर आज मैंने और आपने अपने एसेट्स को اپنے بچوں کو، اپنے گاڑیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی نعمتوں کو نیکیوں میں نہ بدلا تو کل قیامت کے دن کنگلے ہوں گے، بینکرپٹڈ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. اور کوئی یہ کہہ دے میں ڈالر نہیں لیتا، ہاں اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے اور مجھے وہ تصویر نہیں پسند، تو کیا امریکہ میں آ کے وہ سروائیو کرے گا؟ وہ آپ کو نوٹ پسند ہے کہ نہیں پسند، اس کا کلر پسند ہے کہ نہیں پسند، آپ کو کرنا پڑے گا اس کو کنورٹ. اسی طرح مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو اسلام کی کوئی نیکی چیز پسند ہے کہ نہیں؟ وی ہیو وی لائک اٹ اور وی ناٹ، یہی کرنی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ چوائس نہیں دی. اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اس دنیا سے صرف 20-30% ڈیٹیچ ہو جائے نا تو ہم آخرت سے اٹیچ ہو جائیں گے. جو لوگ آج اس دنیا سے 100% اٹیچ ہے نا، ان کی موت بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ان کو رونا آئے گا دنیا چھوڑتے ہوئے، کیونکہ چھوڑے نہیں. آپ غم کو دیکھیں نا، چنگم کہیں لگی ہو، بالوں میں لگ جائے اور آپ اس غم کو اتاریں، چیخیں نکل جائیں گی. جتنے بالوں پہ لگی ہوئی ہے نا زیادہ، اتنی تکلیف ہوگی. اور اگر ایک ہی بال کو لگی ہو، ہلکی سی سی ہوگی، اس بال سے آپ چھڑا لیں گے. یہ دنیا چنگم کی طرح ہمیں چپٹتی ہے، اور اس طرح سے پھر ہم اس دنیا کے دھوکے میں آتے ہیں، ایسے لگتا ہے یہی رہیں گے، اور یکا یک اللہ کے حکم آ جاتے ہیں، اور ایسے غارت کرتی ہے گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں. فرمایا کذالک نفصل الایات لقوم یتفکرون. اسی طرح ہم کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. میں اور آپ سوچنے سمجھنے والے ہیں الحمدللہ، ہم ڈل لوگ تو نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بہت انٹیلیجنسی دی، انٹلیکچوئل ہے، کیا اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟